أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، أما بعد. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس پروگرام میں احکام سے سمبندھت وشے پر بات چیت کر رہے ہیں. ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں مطہرات یا ان چیزوں کے بارے میں بات چیت آرمبھ کی تھی جو کسی اپوتر کو پوتر کر سکتے ہیں. اس میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 10 پرکار کی چیزیں ایسی ہیں جو کسی اپوتر کو اپنی وشیش شرطوں کے ساتھ پوتر کر سکتے ہیں، جس میں سے سب سے پہلی چیز جس کو ہم اپنے جیون میں سب سے زیادہ پریوگ میں لاتے ہیں اور جو سب سے زیادہ چیزوں کو پوتر کرتی ہے وہ تھی پانی. ہم نے پانی کے بارے میں اپنی بات چیت کو آرمبھ کیا تھا اور اس میں آپ کو پانی کے پرکار کے بارے میں بتایا، پانی کس چیز کو کیسے پوتر کرتا ہے. اگر اپوتر ہونے والی چیز برتن ہے تو اس کو پوتر کرنے کی شرطیں کیا ہوں گی، اس کا طریقہ کیا ہوگا، یا اگر برتن نہیں ہے، کوئی اور چیز اپوتر ہوئی ہے، تو اگر وہ پیشاب کے ذریعے سے اپوتر ہوئی ہے تو کیسے پوتر کیا جائے گا، یا کسی اور چیز سے اپوتر ہوئی ہے تو اس کو پوتر کرنے کا طریقہ کیا ہوگا. یہ وہ ساری چیزیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی تھیں. اسی سے سمبندھت ایک دو پرشن ہیں جو ہمارے درشک ہم سے پوچھتے رہتے ہیں، اور یہ شاید ان لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ پرشن ہو جنہوں نے اب تک کسی سے نہیں پوچھا ہے. ایک پرشن جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں جو واشنگ مشین رکھتے ہیں، اگر اس میں اپوتر لباس کو، اپوتر وستر کو دھویا جا رہا ہے تو اس کو پوتر کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، کیسے وہ پوتر ہوگا. تو ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ وہ واشنگ مشینیں جو گھروں میں پریوگ ہوتی ہیں، اگر اس میں اپوتر لباس کو دھلا جائے تو اگر دھلنے کے بعد اس میں ایک بار کور پانی یا جو ہمارے نلوں میں آتا ہے اس سے، یا دو بار قلیل پانی سے اس کو دھویا جائے تو وہ پوتر ہو جایا کرتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ جب ہم نے دھل دیا تو چاہے اسی واشنگ مشین میں پانی بھر کے ہم قلیل پانی سے اس کو پوتر کر دیں دو بار، یا اس کے باہر نکال کے کر دیں، یا اسی طرح سے ہم نل اگر چلا دیں خود اپنی واشنگ مشین میں اور اس پرکار ہم دھلیں، تو اس پرکار وہ ہمارا نجس یا پوتر وستر پوتر ہو سکتا ہے. دوسری بات یا دوسرا پرشن جو ہم سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ چلیے یہ تو بات ہو گئی ان واشنگ مشینز کی جو ہمارے گھروں میں پریوگ ہوتی ہیں. ہم اپنے گھر کی واشنگ مشین کے بارے میں بہتر طریقے سے جانتے ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس میں کون سا کپڑا کیسے ڈالا جا رہا ہے، لیکن وہ واشنگ مشین یا وہ لانڈریز جو سارجنک کاریوں میں پریوگ کی جاتی ہیں یا جس میں الگ الگ پرکار کے لوگ اپنے کپڑوں کو دھلواتے ہیں، اس میں کسی وستر کے پوتر ہونے کا طریقہ کیا ہوگا، کیسے پوتر ہوگا. تو اس کے بارے میں ہمارے فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنے وستر کو جس سمے دیا تھا اس سمے وہ وستر پوتر تھا، تو اگر واپس لے رہے ہیں تو اس کو بھی پوتر ہی کہا جائے گا، وہ اپوتر نہیں ہوگا. یا ہم نے جب دیا اس کے بعد ہمیں سندیہ ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ جو ہم نے کپڑا دیا تھا وہ اپوتر ہوا ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں اگر سندیہ ہوتا ہے تو سندیہ پر ہم کو اپنی دھیان نہیں دینا چاہیے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے لباس کو پوتر ہی سمجھیں. یہ وہ مسئلے تھے جو ہم نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیے، جو ہم سے پوچھے جاتے ہیں اکثر. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پانی جو ادھکتر چیزوں کو پوتر کرتا ہے وہ سوئم اپوتر ہو جاتا ہے. تو وہ پانی جو نجس ہو گیا ہے، وہ پانی جو اپوتر ہو گیا، اس کو کیسے پوتر کیا جائے. وہ پانی جو دوسری چیزوں کو پوتر کیا کرتا تھا، آج وہ خود अपवित्र हो गया है। तो उसको कैसे पवित्र किया जाए, उसका तरीका हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। अगर अपवित्र होने वाला पानी या वो पानी जो नजिस हो रहा है कलील हो, क्या मतलब, यानी ये कि वो कुर से कम पानी हो, जैसे कि हमारे घरों में रखे हुए लोटे का पानी या उस बाल्टी का पानी जो छोटी होती है हमारे घरों में रखी रहती है, अगर उस लोटे का पानी या उस बाल्टी का पानी अपवित्र हो जाता है तो उसको कैसे पवित्र किया जाए। तो उसका तरीका ये है कि उस लोटे या उस बाल्टी के पानी को हम किसी ऐसे पानी से मिला दें जो कुर हो, या किसी ऐसे पानी से मिला दें जो जारी हो, जो बहता हुआ पानी हो, या कुएं के पानी से मिला दें, या हम उस लोटे या उस बाल्टी को ले जाकर हो बारिश अगर हो रही है बारिश के पानी के नीचे रख दें और बारिश का पानी उसमें मिल जाए तो पानी पवित्र हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान देने वाली है, वो ये है कि पानी जिस टाइम अपवित्र हो रहा है वो सिर्फ अपवित्र हुआ हो, उस अपवित्रता के कारण उसका रंग, उसका बू या उसका स्वाद ना बदला हो। अगर नजासत ने पानी का रंग, उसका बू और उसके स्वाद को बदल दिया है तो जिस समय हम उसको पवित्र करना चाह रहे हैं उस समय ये ध्यान रखना आवश्यक है कि जब हम उसको कुर पानी से मिला रहे हैं या जब हम उसको कुएं के पानी से मिला रहे हैं या जब हम उसको बारिश के पानी के नीचे रख रहे हैं तो वो उस समय तक पवित्र नहीं होगा जब तक कि उसका रंग, उसका बू और उसका मज़ा या स्वाद अपने स्थान पर वापस न पलट जाए। अगर वो रंग और बू और मज़ा दोबारा अपने असल स्थान पर पलट जाता है तो वह पानी पवित्र हो जाएगा। तो ये तो बात थी कलील पानी की। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जो कुर पानी होता है वो नजिस हो जाता है, जैसे कि हमारे घरों के ऊपर रखी हुई टंकी का पानी जिसमें शायद हज़ारों लीटर पानी हो नजिस हो गया किसी कारणवश, उसको कैसे पवित्र किया जाए। अगर नजिस होने वाला पानी कुर है तो उसको भी पवित्र करने का तरीका वही है जो कलील में बताया गया था, लेकिन एक अंतर के साथ। उसका अंतर ये है कि जिस समय पवित्र किया जा रहा है, जिस समय उस पानी से मिलाया जा रहा है जो दूसरा कुर पानी उससे मिलाया जा रहा है या कुएं के पानी से मिलाया जा रहा है या बारिश के पानी से मिलाया जा रहा है, तो उसका रंग, उसका बू और उसके स्वाद अपने स्थान पर वापस पलट जाए। यहाँ पर क्यों हमने अंतर की बात कही? अंतर की बात इसलिए कही कि हमने आपको पहले ही यह बात बताई थी कि कुर पानी उस वक्त तक अपवित्र नहीं होता है जब तक के नजासत के मिलने के कारण उसका रंग, उसका बू और उसका स्वाद ना बदल जाए। अब अगर नजासत से इसका रंग, इसका बू, इसका स्वाद बदल जाता है तो उसका जब तक अपनी असली अवस्था पर नहीं पलटता है तब तक वो पवित्र नहीं होगा। इसीलिए ये बात ध्यान देने वाली है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कुर पानी अगर अपवित्र हो गया, उसमें नजासत के कारण रंग वंग बदल गया है, अब अगर उसमें कोई केमिकल मिला दिया जाए जिस केमिकल के कारण वो अपने असली रंग पर आ जाए या उसका बू बदल जाए, उसका स्वाद बदल जाए, तो केमिकल के मिलाने से वो पानी पवित्र नहीं होगा, बल्कि आवश्यक ये है कि उसी मात्रा में या उससे अधिक मात्रा में पानी के मिलाने के कारण ये अंतर पैदा हुआ हो। इसके बाद जो चीज़ पानी पवित्र कर सकता है वो है ज़मीन। कभी कभी ऐसा होता है ज़मीन अपवित्र हो जाया करती है, तो ज़मीन को पवित्र करने के कुछ तरीक़े हैं। जैसा कि हमने आपको बताया पानी दो प्रकार का होता है, या कलील होता है या कुर होता है। तो ज़मीन को पवित्र करने में भी यही चीज़ें देखने वाली होंगी कि हम जिस समय ज़मीन या धरती को पवित्र कर रहे हैं उस समय जिस पानी से पवित्र किया जा रहा है वो पानी कैसा है। अगर ज़मीन को पवित्र करने वाला पानी कुर है तो उसके लिए ये किया जाएगा कि एक मर्तबा जहाँ पर नजासत लगी हुई है पहले नजासत को हटा दिया जाए, उसके बाद उसके ऊपर पानी डाल दिया जाए। जब पानी बह जाएगा उसके ऊपर से तो वो ज़मीन पवित्र हो जाएगी। लेकिन अगर जिस पानी से हम पवित्र करना चाह रहे हैं ज़मीन वो कलील है, मसलन लोटे से हम किसी धरती को पवित्र करना चाह रहे हैं, मसलन बच्चे ने पेशाब कर दिया था या कुछ कर दिया था उससे नजिस हो गई, अब हम उसको पवित्र करना चाह रहे हैं, तो उसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है। वो ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि अगर वो धरती इस प्रकार की है कि पानी को सोख लेती है, यानी क्या, मसलन रेतीली ज़मीन है, हमने पानी डाला पानी अंदर चला गया, अगर ज़मीन पानी को सोख लेती है तो वो कलील पानी से यानी लोटे के पानी से या इस प्रकार के पानी से पवित्र नहीं होगी। शर्त ये है कि जो ज़मीन कलील पानी से पवित्र की जा रही है वो सोखने वाली ना हो। लेकिन अगर सोखने वाली ज़मीन नहीं है तो उसके लिए ये है कि अपवित्रता को हटाने के बाद उसे पानी डाला जाएगा, तो जितनी मात्रा में पानी फैल गया है उतनी मात्रा में पवित्र हो जाएगा, और जहाँ पर ज़मीन ने पानी को सोख लिया है वो अपवित्र रहेगी। इसमें एक और चीज़ जो आती है वो है, कभी कभी हमारे घरों में रखा हुआ अनाज, खाने पीने की चीज़ें, गेहूं, चावल, इस प्रकार की चीज़ें अपवित्र हो जाया करती हैं, तो इनको भी पवित्र करने के लिए इस्लाम ने, शरीयत ने, हमारे फुकहा ने कुछ ख़ास तरीक़े बताए हैं। और कहा यह है कि अगर वो अनाज, जैसे वो गेहूं या वो चावल जो अपवित्र हुआ है, अगर उसका सिर्फ ऊपरी हिस्सा अपवित्र हुआ हो, जैसे कि धान था, धान के ऊपर का छिलका सिर्फ अपवित्र हो गया है, या जौ थी ऊपर का छिलका सिर्फ अपवित्र हो गया है, तो उसके लिए अगर उसके ऊपर जो है कुर पानी या कलील पानी से उसको गुजार दिया जाए तो पवित्र हो जाएगी वो धान या वो अनाज हमारा पवित्र हो जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि खुद उसके अंदर का हिस्सा अपवित्र हो जाता है। वो कैसे, मैं एक मिसाल दे दूँ ताकि आपके सामने बात पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाए। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हमने चावल भीगने के लिए रखे थे, चावल भीग रहे थे, 1-2 घंटे बाद हमने आके देखा तो उसके अंदर चूहे की मैंगनी पड़ी हुई थी। अब चूँकि चूहे की मैंगनी पड़ी थी लिहाजा सब कुछ नजिस है। अब नजिस हुआ चावल बहुत देर से भीग रहा है, इसलिए चावल का अंदरूनी भाग भी नजिस हो गया है। अब इस अंदरूनी भाग को कैसे पवित्र किया जाएगा? तो कहा यह गया है कि कुछ हमारे फुकहा ये कहते हैं कि अगर हमारे चावल, हमारे अनाज का अंदरूनी भाग अपवित्र हो जाए तो उसको किसी भी सूरत पवित्र नहीं किया जा सकता है, ना कलील पानी से और ना ही कसीर पानी से, यानी ना कुर पानी से। लेकिन आयतुल्ला सिस्तानी का फतवा यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। वो ये कहते हैं कि अगर वो अनाज जिसका अंदरूनी भाग नजिस हो गया, अगर उसको कुर पानी में इतनी देर तक रखा जाए कि वो पानी उसके अंदरूनी भाग तक पहुंच जाए तो वो पवित्र हो जाएगा। इसके बाद और भी कुछ मसले हैं जो हम आपको इंशाल्लाह अपने अगले प्रोग्राम में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम सारांश के सूरत में बता दें, वो ये है कि हमने इस अपने प्रोग्राम में पानी की वो चीज़ें बताई, पानी किसी चीज़ को कैसे पवित्र करता है, लॉन्ड्री के मसाइल को बताए, और अगर अनाज नजिस हो जाए या ज़मीन नजिस हो जाए या स्वयं पानी नजिस हो जाए तो उसको किस प्रकार पवित्र किया जाता है। इसके बाद कुछ और मसले हैं वो हमारे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।